hari. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare. Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Jai Prabhu Pada, Jai Prabhu Pada, Prabhu Pada, Jai Prabhu Pada. Jai Jai Guru Dev, Guru Dev, Guru Dev, Guru Dev. Tai Gaura Premanande Jai Jai Sri Radhe Shyam Jai Jai Sri Radhe Shyam Jai Jai Sri Radhe Shyam Om Namo Bhagavate Vasudevaya Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
तो आज के इस 4 फरवरी को आप सबका बरसाना धाम में स्वागत है. बरसाना धाम की पीली पोखर में स्वागत है. पीली पोखर धाम की श्री बरसाना धाम वृंदावन धाम का अंतरंग क्षेत्र है. अंतरंग क्षेत्र का मतलब है यहाँ पर अंतरंग उत्कट लीलाओं का आयोजन होता है और उसी प्रकार के भक्त लोग यहाँ निवास कर सकते हैं. जैसे ललिता, विशाखा, अष्ट सखियाँ. और इसीलिए अंतरंग लीलाओं को संपन्न करने के लिए राधा रानी ने यहाँ पर ऐसी व्यवस्था की है कि यहाँ पर कोई राक्षस का आगमन नहीं हुआ है. वैसे वृंदावन धाम हर प्रकार से दिव्य है. राक्षस को मारने का काम भी दिव्य ही है क्योंकि राक्षस को मारने से उसको नरक में नहीं भेजते हैं, उनको उनकी मुक्ति हो जाती है. भगवान के हाथ से राक्षस का उद्धार होता है, इसलिए उसको राक्षस का उद्धार कहा था। जड़ावर्त उद्धार, चक्टासुर उद्धार, चक्टासुर वध नहीं कहा गया। यहां तक कि कालिया का वध नहीं किया, कालिया को दमन किया, लेकिन फिर भी शुद्ध भक्त बना के छोड़ दिया उसको, शुद्ध भक्त बन के उसको किसी और जगह पे छोड़ दिया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि श्री वृंदावन धाम का हर एक कर्ण बहुत दिव्य है और तीनों लोकों के साम्राज्य को, ऐश्वर्य को भी हम ले जाएंगे तो भी वृंदावन धाम के एक रज का कर्ण हम खरीद नहीं सकते। और ये जो वाक्य हमने कहा, ये भौतिक लेवल पे अंडरस्टैंडिंग नहीं है इसका, ये दिव्य अनुभूति है इसकी, दिव्य रूप से दिव्य स्तर पर समझा जाएगा इसको, क्योंकि ऐश्वर्य भौतिक तरह का होता भी होता है और दिव्य तरह का भी होता है। भौतिक ऐश्वर्य मतलब हम कपड़ा पहनते हैं, सोना पहनते हैं, दागिना पहनते हैं, गाड़ी में घूमते हैं, महल बनाते हैं अपने रहने के लिए, वो भौतिक ऐश्वर्य है। लेकिन आध्यात्मिक ऐश्वर्य मतलब उदारता, दया, करुणा, प्रेम, भगवान के ऊपर आसक्ति, ये आध्यात्मिक ऐश्वर्य है। वो आध्यात्मिक ऐश्वर्य जो है उसके सामने भौतिक ऐश्वर्य तुच्छ है। वैकुंठ का भौतिक ऐश्वर्य भी दिव्य ऐश्वर्य के सामने कुछ नहीं है, वो भी दिव्य है, लेकिन हृदय का जो ऐश्वर्य है वो हर तरह से हर समय दिव्य रहता है। उस प्रकार से हम तो कहेंगे कि इस रज के कण में तो बैक्टीरिया होगा, आपको कोई बीमारी दे सकता है, वो खांसी ऐसे आती है बरसाने में आने वाली, मुंबई जाके 15-15 दिन तक चलती रहती है, ठीक ही नहीं होती, इतना गहराई में घुस जाती है। तो मेडिकली देखेंगे तो क्या इनके लेक्चर में कोई कनेक्शन ही नहीं है, कोई लॉजिक ही नहीं है, कोई तर्क ही नहीं है, कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं कि लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती करने की बात कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है? लेकिन ये सब स्पिरिचुअल बातें हैं, इसको समझने के लिए भी स्पिरिचुअल चेतना होनी चाहिए, स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस होना चाहिए, तब जाकर ये स्पिरिचुअल बातें हमारे समझ में आएगी। उस प्रकार से इस रजकण में जीवन के कल्याण का इतना रहस्य छुपा हुआ है कि जो देवता लोग ऐश्वर्य संपन्न है ना, खुद वो ब्रह्मा जी ऐश्वर्य संपन्न है, पूरा सृष्टि का निर्माण करते हैं, उनका ऐश्वर्य के कौन तुलना कर सकते हैं, कोई दुनिया का वॉरेन बफे और कोई तुलना नहीं कर सकता है। इतनी ब्रह्मा जी का ऐश्वर्य सामने, तो ब्रह्मा जी हंसेंगे इन लोगों के ऐश्वर्य को देखते हुए और उनके ऐश्वर्य के गर्व को देखते हुए हंसेंगे। लेकिन वो ऐश्वर्य वाले देवता जो हैं सब, वो भी इस रज के कर्ण के लिए यहाँ पर आते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारा ऐश्वर्य कहाँ है और ये रज का कर्ण किधर है, इस रज के कर्ण में क्या रहस्य छुपा हुआ है और हमारे ऐश्वर्य में क्या है। इसका एक प्रूफ है कि सारे देवता लोग जो है ना, वो कलयुग में वैष्णवों के घर में जन्म लेने के लिए लाइन में खड़े। अगर ऐश्वर्य बहुत महत्वपूर्ण है तो वो आपके घर में आने के लिए लाइन में क्यों खड़े? तो वो जानते हैं कि मनुष्य जन्म जो है वो देवताओं के जन्म से भी श्रेष्ठ है और मनुष्य जन्म में जो वैष्णव बनते हैं वो देवताओं से भी श्रेष्ठ हैं, इसलिए देवता लोग उनका संग लेने के लिए उनके शरीर में निवास करने लगते हैं। दे वॉन्ट एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, इसलिए वो देवताओं की इच्छा होती है कि मैं वैष्णवों के पास, वैष्णवों के शरीर में, वैष्णवों के मन में, वैष्णवों के सान्निध्य में रहूं। और फिर धाम में जो वैष्णव रहते हैं उनके क्या बात है? तो वो जो सही बुद्धिमान देवता है वो जानते हैं कि हमारा ऐश्वर्य ब्रजवासियों के ऐश्वर्य के सामने कुछ भी नहीं है, जानते हैं इस बात को। हमको तो केवल दिन में चप्पल निकाल के आना है, वाहन बाहर रख के दिन में ही भागना है यहाँ से। ये लोग तो भगवान के गोद में खेलते रहते हैं, भगवान उनके गोद में खेलते रहते हैं, है ना। यहाँ तक कि सुखदेव जी और ऐसे रचनाकार जो है वो भी पूछते हैं कि क्या ऐसा पुण्य किया है ग्वाल वालों ने क्या पुण्य किया ऐसे कि ठाकुर जी उन पर निछावर है, पूरे खेलते उनके साथ में, वो भगवान के कंधे पर चढ़ जाते हैं। कोई देवता हिम्मत कर सकता है ऐसे? इंद्र आके बोलेगा भगवान मेरे कंधे पे चढ़ना है आपके, बोले वो चढ़ा के नहीं बालक, मैं तो आपका भक्त देवता हूँ, आपकी सेवा करता हूँ, वर्ल्ड का मैनेजमेंट देखता हूँ, एक बार कंधे पे चढ़ने दो, हो सकता है क्या? लेकिन ग्वाल बाल तो एकदम बिंदास चढ़ते हैं, बोलते घोड़ा बन जा, हार गया ना अभी, घोड़ा बन जा। इसको ऐश्वर्य कहते हैं, इसको ऐश्वर्य कहते हैं। और हम सब लोग वो ऐश्वर्य जो है वो ऐश्वर्य संपन्न होने की भावना से नहीं, वो धन जो है वो प्राप्त करने के लिए हमको यहाँ आना है। इसलिए सारा प्रयोजन है, निमित्त है कैंप का, ताकि वो जो प्रेम का धन है ना, जो भगवान को अपना बना लेता है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि वश में कर देता है, वश में वो हो जाते हैं, हम लोग वश में करना नहीं चाहते, लेकिन अपना बनाना चाहते हैं। वो अपना बनाने की जो प्रक्रिया है ना, वो यहाँ पर आसानी से होती है, वैकुंठ से नहीं होती। वैकुंठ से दूर से देखना पड़ता है, उसकी भी छोटी कहानी बताता हूँ आपको मैं। अरे ग्वाल बालों ने एक बार बोला भगवान को, अरे आप तो, मैं हम जानते हैं कि आप वैकुंठ के भगवान हो, हमको वैकुंठ के दर्शन कराओ। तो भगवान कहते कुछ नहीं, यहाँ पर वैकुंठ में क्यों जाना चाहते हो? नहीं 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 ऐसा नहीं, आप दर्शन कराओ। बहुत जिद करते बालक, भगवान मना करते रहते हैं लेकिन वो जिद करते रहते हैं। फिर कहते हैं ठीक है चलो, आपको देखना ही है तो देख लो, आंखें बंद कर लो। तो वो आंखें बंद कर देते हैं, और उसके बाद में जब आंखें खोलो ऐसे आवाज़ आती है, तो अपने आप को वैकुंठ में पाते हैं, एकदम डायरेक्ट ट्रांसफर। कोई जर्नी वर्नी, कोई बैग भरना ऐसा कुछ नहीं है, कोई विमान आने दो ऊपर से, ऐसा कुछ नहीं, ऑन द स्पॉट, आँख बंद आँख खुली सीधे वैकुंठ में। अच्छा अभी कन्हैया किधर है? कन्हैया तो नहीं है, बहुत बड़ा माहौल है, बहुत बड़ी जगह है, बहुत सुंदर सुंदर देवताएं स्त्रियां, एकदम उनका रूप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। एक नहीं ऐसे लक्ष लक्ष लोग हैं वहां पर, और दूर कहीं बड़े सिंहासन पर हमारे कन्हैया जी बैठे हैं, लेकिन विष्णु बनकर बैठे, और राधा रानी जो है लक्ष्मी बनकर बैठी। बहुत सारे गहने पहने हुए हैं, बहुत सारे वस्त्र पहने हुए हैं, सब लोग सेवा कर रहे हैं, आगे पीछे सैनिक खड़े हैं, राजदंड है, सब क्या क्या, बहुत बड़ा माहौल है। तो कुछ देर तो अच्छा लगा उनको देख के, फिर जब कन्हैया को मिलने का दिल हुआ ना, तो नहीं मिल सकते, इतने दूर, इतनी शाम, इतना अंतर पार करके जाना है, इतनी परमिशन, इतना सिक्योरिटी, इतना क्या क्या करके तड़प रहे हैं वो, पुकार रहे हैं उसको, लेकिन पुकार पहुँचेगी कहाँ इतनी दूर तक। फिर जिस वैकुंठ में जाने के लिए लोग तड़पते रहते हैं, उस वैकुंठ में ग्वाल वालों को घुटन सी होने लगती है, घुटन, तो निकालो यहाँ से हमको, निकालो। तो फिर आवाज़ आती है आँख बंद करो, फिर आँख बंद करते हैं, फिर आवाज़ आती है आँख खोलो, वापस ऐसे बाजू में कन्हैया ग्वाल बाल के भेस में खड़ा है, गाय खड़ी है, तो कैसे लगो वैकुंठ? बढ़िया लगो, तुम्हें मुबारक। ऐसा है तो ग्वाल बाल कैसे है ना, उनको ना ठाकुर जी में इंटरेस्ट है, मन में विचार तो बहुत आते हैं, ये देखना है, वो देखना है, वो फल खाना है हमको, वो तार का फल खाना है, बहुत सारा चीज है, लेकिन अल्टीमेटली ना वो सब उनके लिए करते हैं। आचार्य बताते हैं, उन्होंने ऐसा कितना बताया कि ताड़ के फल चाहिए हमको, बहुत बदबू खुशबू आ रही है कई दिन से, दिल तड़प रहा है, मुंह से पानी टपक रहा है, ठाकुर जी कुछ करो, आप तो बलवान हो, इधर धेनु का रहता है, वो हमको आने देता नहीं है, खुद भी नहीं खाता है और हमको भी नहीं खिलाता है, ज़मीन पर गिरते उसकी खुशबू आती रहती है, उससे हमारा दिमाग ख़राब हो रहा है। लेकिन पता है रहस्य की बात क्या है? रहस्य की बात यह है कि वो ठाकुर जी को वो मीठे फल खिलाना चाहते थे, और अगर वो कहेंगे कृष्ण बलराम जी हमें आपको वो फल खिलाने हैं, तो भगवान खुद के लिए वो नहीं करते। भगवान भी बड़े अद्भुत हैं, आप बोलेंगे आपको खिलाना है ताड़ के फल, तो फिर वो बोलेंगे नहीं जरूरत नहीं मुझे, आई डोंट नो, बट हमें खाना है तो भगवान करेंगे, हम बोलेंगे आपको खाना है, तो ग्वाल वालों की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए वो कुछ भी करेंगे, और तब ये बहाने से फिर उनको खिलाएंगे। तात्पर्य क्या है, कुछ भी हो करना सब कुछ ठाकुर जी के लिए, बाकी खुद के लिए कुछ नहीं करना, ये ग्वाल वालों का भाव है। और ऐसे भाव वाले ऐश्वर्य संपन्न जीव ऐसे ग्वाल बाल मोर गाय बनकर, गोपी बनकर, माँ बनकर, पिता बनकर यहाँ रहते हैं। उनको कुछ नहीं चाहिए, ना वैकुंठ चाहिए, ना मोक्ष चाहिए, ना ज्ञान चाहिए, ना कुछ अधिकार चाहिए, ना कुछ रस ऐसा बोले मुझे बहुत बढ़िया रस मिलना चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए उनको। उनको केवल ठाकुर जी का आनंद चाहिए। ही शुड बी हैप्पी। आश्लिष्य वा पादरताम पिनष्ट माम, कुचल दो हमें, गले लगा दो, तड़पा दो, हाँ तोड़ दो, या अपना बना लो, गले लगा लो, पास बुलाओ दूर भगाओ, मैं सब विधि शरण तिहारी, हम आपके शरण में हैं, आप खुश रहो बस, आपकी खुशी हमारा जीवन का उद्देश्य है। थोड़ा सा परिचय क्यों दिया मैंने इस श्लोक का, क्योंकि हमको पता होना चाहिए कि हम क्या है, कहाँ जा रहे हैं और क्या बैठे हुए हैं, इसका महिमा पता होना चाहिए। और आज की तारीख में भी हमको तो वो शास्त्र के वर्णन तो आज तो सारे दिखाई नहीं पड़ेंगे ऐसे के तैसे, लेकिन फिर भी सूक्ष्म रूप में हर ब्रजवासी के हृदय में वो प्रेम का स्थायी भाव रहता है। नो, स्थायी भाव, बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक एकदम नींव, नींव कुछ बोलते हैं ना, फाउंडेशन वो है, हर एक ब्रजवासी के अंदर रहता है। इतने प्रिय हैं भगवान को ये ब्रजवासी, इसी भावना के लिए प्रिय हैं। थैंक यू राधे श्याम की तरह। तो ये सब समझेंगे तो यहाँ के एक एक दर्शन, एक एक पेड़ आपको दिव्य अनुभूति देगा, दिव्य प्राप्ति करा देगा। ऐसे जीव यहाँ पर हैं जो ऋषि मुनि तप कर रहे हैं यहाँ पर भगवान को रिझाने के लिए, भगवान के धाम का गौरव बढ़ाने के लिए वृक्ष बन के बैठे हुए हैं, भगवान के लीलाओं का सार ग्रहण करते हैं। और हमारे तुम्हारे जैसे भटके हुए जीव आते हैं यहाँ पर तो उनको वो सार दे देते हैं। इसलिए गुरु जी का आदेश है कि धाम में कथा करोगे तो पेड़ के सहारे करो, बिल्डिंग में, कमरे में, हॉल में करते हैं हम लोग, लेकिन कोशिश करो जितना हो सके उतना पेड़ के सहारे करो, क्योंकि तो पेड़ जो है ना ये नित्य लीलाओं का दर्शन करते रहते हैं, शहर में वहाँ की लीलाओं का दर्शन करते रहते हैं जो वहाँ पर चलता है, और उसका सार भी ग्रहण कर लेते हैं, उनका तो नेचर है जो भी सार है। तो शहर में वेड़ पेड़ सिकुड़ जाते हैं, डिस्कोथेक के बाहर, शराब के अड्डे के बाहर जो पेड़ ऐसे एकदम दुबले पतले ऐसे कमज़ोर दिखाई पड़ते हैं। यहाँ के वृक्ष देखो, पानी नहीं बरसता यहाँ पर, बहुत कम पानी बरसता है, लेकिन वृक्ष देखो, हाँ बहुत भंगुर वर्षा वाले जगह को भी शर्मिंदा करेंगे ये वृक्ष, क्योंकि दिव्यता है। दिव्यता का मतलब कोई भौतिक चीज़ों से सरोकार नहीं होता है उसका, आपका जो अंडरस्टैंडिंग है ना, इतना पानी होगा तो इतना फैलेगा, इतना पानी होगा तो इतना फल देगा, इतना पानी होगा तो इतना विस्तार होगा, ये हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है ना वो सबको फेल कर देते, लॉजिक को ही फेल कर देते पूरा, लॉजिक का काम ही नहीं कुछ यहाँ पर। तर्क के परे हैं भगवान, तर्क के परे हैं भगवान का धाम, इसलिए हमारा सारा जो भौतिक दिमाग है ना उसको छोड़ के आना चाहिए यहाँ पर। वो लेके आएंगे ना तो तड़पते रहेंगे यहाँ पर, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे उठाए पर्वत, ऐसे कैसे कर सकते हैं अरे वो पूरा जो समुद्र तक बादल जो होता है वो दुनिया का नाश करता है, वो एक गांव को नाश नहीं कर सकता, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे ही पूछते रह जाएंगे। सार दो, यहाँ का जो लाभ है वो रहेगा अपनी जगह पर, हम अपना तर्क करते ही रहेंगे और वही रहेंगे, बार बार आते रहेंगे धक्का खाने के लिए। तो वैसे ही तर्क विसंगत कथा यहाँ पर भी है। राधा रानी को यशोदा माई ले जाती है अपने महल में कन्हैया के लिए भोजन बनाने के लिए, हाँ रोज जाती है, रोज आती है, रोज मैया दर्शन करती हैं, कितनी कुशलता से भोजन बनाती है, कितना कुशल है सब लोगों को एक साथ में संभाल के, कई चूल्हों पर एक साथ में अनेक स्वादिष्ट परम स्वादिष्ट व्यंजन बनाना है, सखियों को लगाना है काम पे, इतना सुंदर कोऑर्डिनेशन है, इतना प्रेम है, इतना भाव है, इतना स्वाद है अन्न में, दुर्वासा से वरदान प्राप्त कर चुके हैं, इतनी सुंदर कन्या, सौंदर्य में अद्भुत, गुणों में अद्भुत, कला में अद्भुत, भाव में भी अद्भुत, नम्रता में भी अद्भुत। मेरे लाला के लिए ऐसे ही बहू होनी चाहिए। मन में खिचड़ी पक रही है तो एक दिन भाव विभोर हो जाते हैं और भाव में उसको गले लगाते हैं, बड़े प्रेम से आंसू भाते, प्रेम के वात्सल्य के आंसू भाते हैं और फिर तुरंत हल्दी निकाल के लगा देते हैं। हल्दी लगाने का अर्थ होता है वाग निश्चय, यानी वधू वर का विवाह अभी निश्चित हो गया है और फिर इतने भाव में रहती है प्रेम में, हल्दी लगाने के बाद भी गले लगाकर रोती रहती है। बहुत राधा रानी मन ही मन बहुत खुश हो जाती है। सबके मन में तो एक ही बात है ना, कोई बोलता तो नहीं है लेकिन सबके मन में एक ही बात है। सबके मन में, ब्रजवासियों के, बरसाना वालों के, नंदगांव वालों के, बड़ों के, छोटों के, अपनों के, परायों के, जितने भी लोगों के मन में एक ही विचार है कि इनका विवाह होना चाहिए। ये जोड़ी सबसे बेस्ट है, जोड़ी नंबर वन ब्रज की। ये सब होता है, बड़े आसमान तक उनका भाव आनंद का छूता है, बड़े प्रेम से अनुभूति करते हैं कि आज जीवन की पूर्ति हो गई, सबकी इच्छा पूरी हो गई। तो सखियाँ फिर लौट के आती हैं, राधा रानी, ललिता, विशाखा और खास सखियाँ। लेकिन जब यहाँ पर बरसाने की सीमा में प्रवेश करते हैं तो कुछ कुछ होश में आते हैं कि क्या हुआ, उसका अर्थ क्या होता है, उसका परिणाम क्या होगा, माता पिता क्या कहेंगे, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा विचार शुरू हो जाता है तो डर लगने लगता है कि हमने कोई सही काम नहीं किया है, अभी डांट पड़ेगी जोरदार। तो यहाँ पर आके ये वृषभानु महाराज का बड़ा प्रिय कुंड है, उनका निजी कुंड है, उसका नाम प्रिया कुंड भी है, पीली पोखर भी है, बहुत सारे नाम है। तो यहाँ पर इसके किनारे आकर बैठकर अभी बहुत चिंताग्रस्त होकर कुछ चर्चा की जा रही है भी कैसे होगा, मैया क्या बोलेगी, पिता क्या बोलेंगे। तो फिर हर समय जब समस्या होती ना तो एक हाई कोर्ट है इसके अंदर, पता है कौन सा है, ललिता देवी। सब सारा जो समस्याओं का समाधान है ना उनके पास पहुंचता है, कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो मुकदमा भी उनके पास ही पहुंचता है, कोई समस्या होती है तो भी उनके पास पहुंचता है, जो भी होता है। वो राधा रानी के गुरु भी हैं एक तरह से, बड़ी भी हैं, गुरु भी हैं, बड़ी तेज भी हैं, है ना, जो समस्याओं का समाधान करने के लिए और कुछ झगड़ा वगड़ा निपटाने के लिए कोई आदमी ऐसा होना चाहिए जो तेज तर्रार हो, तो देख के लोग पीछे हट जाएं, ऐसा आदमी होना चाहिए ना। राधा रानी बेचारी भोली भाली, ऐसे नम्र, ऐसे गूगल गाय की तरह, क्या भोली भाली राधा रानी ललिता का सहारा लेती है, भाई ललिता तू ही बचा लेना अभी। तो कहते हैं आइडिया, डोंट वरी, चिंता मत करो, ये देख पिताजी का कुंड है ना, अच्छी तरह से हाथ धो लो, हम सब सहायता भी करेंगे हाथ धोने के लिए, एक एक कण, एक एक नैनोग्राम जितना हल्दी है वो सब निकाल देंगे। और हम ही तो है, अभी संध्या का समय है, कोई है तो नहीं कुंड पे, हम किसी को नहीं बताएंगे, सीधे घर चले जाएंगे, चुपचाप रहेंगे, ये बात को दबा देंगे पूरा। लॉजिकली सही है ना, कोई देखने वाला नहीं, साक्षी नहीं, कुछ नहीं, लेकिन ये सही नहीं है, अभी बात पूरी फैलने वाली है, जो छुपा के रखी है, दबा के रखी है, पूरे विश्व में फैलने वाली है कुछ ही देर के बाद जाते हैं घर में हम, निकल के रात को सो जाते हैं, कोई कुछ टेंशन नहीं, कोई बात नहीं कर रहे, कुछ नहीं, क्या हुआ आज, कुछ नहीं, हम पीसफुल सो रहे हैं, दिल में गुदगुदी हो रही है लेकिन बाहर कुछ नहीं हो रहा है। सवेरे लोग आते हैं कुंड पे अपना अपना नित्य कर्म करने के लिए, कोई कपड़ा धो रहा है, कोई स्नान कर रहा है, दिखता है पानी पीला हो गया, पानी पीला हो गया, पीला कैसे हुआ, पीला कैसे हुआ भाई, पीला कैसे हुआ भाई, पीला कैसे हुआ, आप पूछ रहे हो, पूछ रहे हैं, सब पूछ रहे हैं पीला कैसे हुआ। लेकिन ब्रजवासी बड़े चतुर होते हैं, इसमें एक कारण है उसका, क्योंकि बड़े सरल हृदय, स्वच्छ हृदय होते हैं, उनके मन में कोई स्वार्थ का कलमिश नहीं होता है, कोई कपट नहीं होता है। और एक बात ध्यान रखना, सरल हृदय जो आदमी होता है ना, वो सब चीज़ों को बड़ी आसानी से समझ जाता है, जो सत्य है ना आपके आसपास में, किसी के विषय में या प्रसंग के विषय में, स्थान के विषय में, जो भी सत्य है, वास्तव है, वो उसको तुरंत समझ जाता है, क्योंकि उसका हृदय आईने की तरह होता है, सच एकदम, तो जो भी है वैसे दिखता है। लेकिन जिसका हृदय काम वासना लोभ से दूषित है उसको चीज़ अलग दिखती है, जैसे होने ऐसे दिखती नहीं है, अलग दिखाई पड़ती है। तो ये लोग ना तर्क करते हैं बैठ के, हाँ हो सकता है वो रोज जाती है ना वहाँ पर, तो माता माता देवी बहुत ज़्यादा भाव विभोर हो गई होगी, फिर हल्दी लगा दिया होगा, फिर यहाँ आ गई होगी, फिर डर गई होगी, फिर हाथ धो लिए होंगे और घर गई होगी। अभी होगी 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 और आगे होगी कैंसिल कर देते हैं, हो गया ऐसा लिख देते हैं, स्क्रिप्ट चेंज कर देते हैं और सब कड़ियाँ ज्वाइन करके एक अच्छी कहानी बना देते हैं। और कहानी जो हो गई होगी ऐसे ही सोच रहे हैं, वो हो गई ये ही मान कर महल में पहुँचते हैं। ठीक है, दिखाई पड़ रहा है ना महल, यहाँ पर यहाँ से नजरसन है महल का, हम पहुँच जाते हैं। हम पहुँचने के बाद में फिर पूछते हैं, अरे वृषभानु महाराज हमने तो सुना है कि आपकी बेटी की सगाई हो गई। देखा से चतुर लोग हैं, समझो अभी आपको, समझो आप अभी अमेरिका जाने वाले हो और किसी को बता नहीं रहे हो आप, और मुझे आपसे निकालना है वो बात, तो मैं क्या पूछूंगा आपको? ऐसा नहीं पूछूंगा कि आप अमेरिका जा रहे हो क्या, तो ना नहीं, मैं कब जा रहा हूँ, मैं पूछूंगा कब टिकट है आपका अमेरिका का, समझ गए आपको? ऐसा डाल दिया ना तो आप एक एक सेकंड के लिए, हाँ 22 तारीख को है, ऐसे जाके पूछ रहे हैं, अरे सगाई हो गई, बधाई हो आपकी कन्या की सगाई हो गई, तो वो तो कुछ पता नहीं उनको, अभी किसको वो किसके ओर देखेंगे, राजा रानी क्या बात है, नीचे देख रही हो क्या बोलेगी, तो सब बात तो वो स्वीकार कर लेती कि ऐसा ऐसा हुआ, मैं क्या करूं, मैं कुछ कर नहीं पाई, लेकिन ऐसे ऐसे हुआ, फिर मैंने ऐसे ऐसे किया, हाथ धो लिया, बड़ी खुशी हो जाती। बड़ी लंबी कहानी है वो, राजा रानी के हाथ धोने से ये कुंड पीला हो जाता है पूरा, आज भी ये जल पीला है। आप बोतल में लेंगे ना तो आपको वो दिखेगा पारदर्शी है, हाथ में लेंगे तो पीला दिखेगा, बहुत पानी लेंगे तो वो पीला दिखेगा, लेकिन ऐसा देखेंगे तो आपको लगेगा क्या है इसमें, कुछ नहीं है, ये तो तर्क के परे बात है, समझने वाली भाव है तो समझ में आएगा, नहीं तो आपके लिए कुछ पीला भी नहीं है और सफ़ेद भी नहीं। तो यहाँ पर जो भाव का चश्मा पहन के आएगा ना उसको सब कुछ समझ में आएगा। तो यहाँ पर फिर कृष्ण भगवान भी आए कुछ दिन के बाद, वो भी इसको जल को पीला देखकर आश्चर्यचकित हो गए, उनको पता नहीं यहाँ पर क्या हुआ, तो जल में जाते प्रवेश करते हैं, पूछते पूछते जाते हैं कि जल पीला कैसे हुआ, जल पीला कैसे हुआ। तो फिर वो जब जल में घुसते हैं और जल में बाहर निकलते हैं ना तो भी खुद पीले हो जाते हैं, कंप्लीट गोल्डन स्वर्ण रंग के बन जाते हैं, फिर भी पूछते रहते हैं कि पीला रंग कैसा, ये पीला रंग कैसा, इसका रहस्य क्या है, इसका रहस्य क्या है, उसका रहस्य है वो जो पीला रंग है ना वो राधा रानी के प्रेम का प्रतीक है, उसका रंग ठाकुर जी पे चढ़ गया है, इसलिए वो भाव विभोर होकर पूछ रहे हैं, पागलों की तरह बावड़े बनकर पूछ रहे हैं ये पीला रंग क्या है, पीला रंग क्या है, हमको भी पूछना चाहिए पीला रंग क्या है, तो चाहिए ना हमको वो प्रेम, ये कुंड का आचमन करेंगे ना तो वो प्रार्थना करो आप कि हमें भी थोड़ा सा प्रेम उनके चरणों में प्राप्त हो, उनके बराबर होने के लिए नहीं, उनका सेवक बनने के लिए, ताकि अच्छी तरह उनकी सेवा कर सकें। इसी जगह पर ठाकुर जी जो है ना वो होली का नौता भेजते हैं, अभी देखो वसंत पंचमी हो गई ना 22 तारीख को, वसंत पंचमी से रंग उड़ना शुरू हो गया सब ब्रज में, वसंत पंचमी के दिन 4 बजे से लेकर स्थापन आरती में रंग होता है सब जगह पर, महाप्रसादी रंग, वो भी प्रेम को प्रकट करने का एक साधन है, रंग जो होता है ना वो उससे हृदय का प्रेम प्रकट करने का एक साधन है, वो मस्ती करने के लिए नहीं होता है, वो कष्ट देने के लिए नहीं होता किसी को, तो जा रही है बहू तो उसके ऊपर फुगा मारना है गुब्बारा, उसके लिए नहीं होता है वो, जिसका प्रेम का संबंध है उनके बीच में खेला जाता है, जोर जबरदस्ती किसी को लगाना ये इस खेल का पर्पज नहीं है। तो यहाँ पर ठाकुर जी नंदगांव से पांडे को भेजते हैं आमंत्रण देने के लिए, और वो यहाँ पर आता है इसी जगह पर, और यहाँ पर सखियाँ उनको मिलती हैं, सखियाँ मिलके वो उसको आमंत्रण देता है, ऊपर भी जाता है, लेकिन यहाँ पर सखियाँ देखते हैं अकेला पांडे आया है, हमारे नायक की घर से आया है, हाँ उसको पूरा रंग से धो देते हैं, पूरा भिगा देते हैं, वो बेचारा परेशान हो जाता है, बोले मैं तो देखो कार्ड लेके आया हूँ, कार्ड ले लो, मुझे क्यों भिगा रहे हो। लेकिन उसको पूरा चारों तरफ से भिगा देते हैं। थोड़ी देर में राधा रानी आती है, उसको दया आती है देख के उसको, अरे बेचारा अकेला आया है बेचारा निमंत्रण देने के लिए, उसका क्या दोष है इसके अंदर, उसको तो आने दो जिसका निमंत्रण लेके आया है, फिर उसको देखेंगे क्या कर रहे हैं, इसको छोड़ दो, फिर भी भिगा रहे हैं उसको। फिर वो ना बड़े कुशलता से सखियों के चंगुल से उसको सेपरेट कर देते हैं, फिर घर ले जाते हैं उसको। राधा रानी बड़ी दयालु है, उसका हृदय बहुत कोमल है, वो किसी का कष्ट देख नहीं सकती। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, बेसहारों का सहारा तेरे बरसाने में है। तो वो ले जाते बड़ी दया से उसको अपने घर पे। फिर उस पर आतंक हुआ है ना अभी कुछ देर पहले, तो उसको घर जाके गर्म पानी देती है, स्नान करता है गर्म गर्म सुगंधी जल से, उसके गीले कपड़े छोड़ के नए नए वस्त्र उसको देती है, उसको पंच पकवान भोजन कराती है आसन में बिठ कर। हाँ ब्राह्मण है वो, पांडे है, पूजा के समान उसका सत्कार होता है। फिर मैया आती है, अरे पांडे आयो है, निमंत्रण लेके आयो है, उसके मुंह में लड्डू भरती है, प्रेम से लड्डू भरती है, उसी को लड्डू मार होली कहते हैं। वो अष्टमी के दिन होता है, हाँ इस महीने में 23 तारीख को लड्डू मार होली होगी। वो तो उसने मुंह में प्रेम से खिलाया था, लोग उसको अभी जो नंदगांव से आते हैं ना उनके ऊपर लड्डू फेंकते हैं, श्री जी के मंदिर के अंदर से वो लड्डू फेंकते हैं और भाव से, और बहुत लोग लड्डू स्पॉन्सर करते हैं, लड्डू देते हैं श्री जी मंदिर में, ऋषभानु महाराज को देते हैं, कीर्ति माता को देते हैं, और वो नंदगांव से जो आ रहे हैं ना उनके ऊपर लड्डू फेंकते हैं, और वो लड्डू को पकड़ना बड़े भाग्य की बात समझते हैं, बिग फॉर्चून, अगर आपको लड्डू पकड़ सके मिल सके, एक कण भी मिलेगा रास्ते पर गिरा तो भी बीन लेते हैं उसको, बड़े भाग्य की बात समझते उसको ग्रहण करते हैं कि लड्डू मार का प्रसाद है ये। फिर राधा रानी उनको पलके में बिठा कर नंदगांव पहुंचाती है। मालिक को ऐसे ही करना चाहिए, अगर सेवक ने अपराध किया ना किसका, तो मालिक को सत्कार ऐसे करना चाहिए कि मेरे सखी ने उसको परेशान किया तो उसने कितना सत्कार किया, गर्म पानी दिया, वस्त्र राज वस्त्र दिए, भोजन खिलाया, पूजा किया, दक्षिणा दिया, पालकी में बिठाया, घर तक छोड़ दिया उसको। फिर अगले दिन ठाकुर जी आते, ऐसा सुंदर वर्णन है, ऐसा सुंदर वर्णन है कि अगले दिन नंदगांव ठाकुर जी निकलते ना होली खेलने के लिए, तो होली का नायक है ना, नायक द हीरो ऑफ द होली, वैसा भेस करते हैं उसको, पूरा कलरफुल ड्रेस फेटा पहनते हैं, पूरा वस्त्र ऐसा पहनते ना कि आपको पता चला कि होली खेलने जा रहे हैं, तो देवताओं को खबर मिलती है उस समय कि ठाकुर जी नायक बनकर होली का खेल खेलने जा रहे हैं, तो सारे देवता भी भेस बदल कर उसमें आ जाते, कोई 4 मुख वाला, कोई 5 मुख वाला। सुखदेव जी आते हैं नग्न अवस्था में, नारद मुनि उनको गोद में लेके जा रहे हैं, ठुमक ठुमक के नाच नारद मुनि नाच रहे हैं, ऐसा अद्भुत अद्भुत वर्णन है उसका। ब्रह्माणी ब्रह्मा जी से झगड़ा करती है बाद में कि आप तो गए, मुझे तो बोला नहीं आपने, आप तो जाते रहते हो आनंद लेने के लिए, मुझे लेके नहीं जाते, ऐसा ब्रह्माणी ने ब्रह्मा से झगड़ा किया उसके बाद में। तो ब्रह्मा जी पहुँच गए भाव विभोर होकर, भागते भागते सब इंद्रादि देवता पहुँच गए और सब लोग ना ठुमक ठुमक के नाच कर कृष्ण भगवान को रिझा रहे हैं, आनंद दे रहे हैं उनको, क्योंकि उनको लगता है कि हमको तो आने को मिलता नहीं, आज मिला हुआ है तो ले लो ठाकुर जी को, देख दर्शन कर लो इस अद्भुत रूप में, है ना। तो प्रधानमंत्री समझो अपने घर पे होली खेल रहे हैं, तो आपको दर्शन मिलेगा क्या उनका, लेकिन मिल गया समझो, आपको आमंत्रण मिल गया, तो आप लोगों ने देख लो प्रधानमंत्री को, देख लो देश विदेश में घूमते हैं ये, देखो अभी होली में कैसे रंगे हुए हैं, एक अद्भुत मौका है ना वो। तो ऐसे ही हमारे ठाकुर जी जो परम भगवान है, परम लीला पुरुषोत्तम गोलोकेश्वर हैं, देखो कैसे होली के नायक बनकर रेस रंग श्रृंगार करके कैसे दौल रहे हैं, ठाकुर जी मुरली बजा के सब नाचते नाचते जा रहे हैं, मधुमंगल नाच रहा है, सब नाचते नाचते पहुँचते हैं यहाँ पर, वहाँ से बड़ी बारात का वर्णन आता है उनका। यहाँ पर आते हैं देखते सखियाँ यहाँ पर खड़ी हैं, लेकिन राधा रानी नहीं है, विशाखा देवी है, ललिता नहीं है। तो फिर ललिता को विशाखा को नज़र से इशारा करके पूछते हैं किधर है, तो वो दिखाती है उधर है महल में, महल की ओर इशारा करती है। तो फिर दोबारा इशारा करते हैं, जाओ ले आओ उनको। तो विशाखा देवी पहुंचती है ऊपर, उधर क्या सीन है, राधा रानी किसी कारण रूठ के बैठी हुई है, ललिता जी समझा रही है उनको लेकिन नहीं मान रही है, बहुत देर समझा रही है लेकिन नहीं मान रही है। तो उसके बाद में क्या हो रहा है, विशाखा देवी आती है, बताती है वो तो आ गए हैं, पूरी टोली आ गई है, रंग पिचकारी गुलाल अबीर सब लेकर आए हैं, क्या तुम रोते बैठे हो, अभी तो छोड़ो अपना मान। तो भी नहीं मान रही है, तो देखो बाहर आके देखो कम से कम। तो झरोके में आती है देखने के लिए, झरोके में आते ही दर्शन होता है यहाँ से ठाकुर जी को, तुरंत पिचकारी निकालते हैं, लेकिन उनकी पिचकारी यहाँ से वहाँ तक नहीं पहुँचती है, थोड़ा दूर हो जाता है वो, लेकिन मन का भाव तो वहाँ पर पहुँच जाता है, मान नष्ट हो जाता है। वो तुरंत अंदर जाती है, तुरंत श्रृंगार करके को लेकर आते हैं, और फिर इसी कुंड के किनारे उनका मिलन होता है। सज धज के आई हुई नायिका राधा रानी, ललिता विशाखा, श्री कृष्ण भगवान उनके सखा, उनका मिलन यहाँ पर होता है। फिर होली खेलने का निर्णय होता है, होली खेलेंगे, उसका नियम बनाते हैं, पहले सूखी होली खेलेंगे, फिर गीली होली खेलेंगे, फिर ऐसा करेंगे, फिर भोजन करेंगे, फिर नाचेंगे। तो एक इसमें विशेष बात है जिस पर हमारे यहाँ की कथा हम समाप्त कर देंगे। भगवान इस वृंदावन धाम में, हाँ प्लीज लिसन केयरफुली, जो भी करते हैं ना हारने के लिए करते हैं, सारी योजना जो करते हैं ना हारने के लिए करते हैं, कहाँ से, ब्रजवासियों की तरफ से, राक्षसों के लिए नहीं, उनको तो मार देते हैं, लेकिन ब्रजवासियों के लिए जो भी करते हैं उसमें खुद के हारने का प्लानिंग बना के आते हैं। कैसे, प्रूफ क्या है इसका, अरे गाड़ा भर के लेके आए हैं गिफ्ट्स, उसको कहते हैं फगुआ। फगुआ का मतलब क्या होता है, समझो आप हार गए खेल में तो आपको वो गिफ्ट देना पड़ता है जो जीत गए हैं उनको, ये पहले से ढेर सारी गिफ्ट्स लेके आ रहे हैं। समझो अभी आप विनर टीम हो, आप वर्ल्ड चैंपियन टीम हो, तो आप क्यों ऐसा गिफ्ट लेके आएंगे, आप तो बोले आप जीतने वाले हैं, तो वर्ल्ड चैंपियन टीम है, ये वर्ल्ड चैंपियन जो है ना श्री कृष्ण भगवान, अभी गाढ़ा भर के गिफ्ट लेके आ रहे हैं, फगुआ, खाने पीने की चीज़ें हैं, अलंकार है, वस्त्र है, क्या क्या चीज़ें हैं उसके अंदर लेके आ रहे हैं उसको। और यहाँ पर खेल शुरू होता है, पहला क्या है, सुखी होली। तो सुखी होली खेलते हैं ना, तो कुछ ही समय में कृष्ण और उनकी टीम हारने लगती है, गोपियाँ हावी हो जाती हैं, दे ओवरवेल्म ऑल गोपाल्स। तो फिर क्या होता है, कृष्ण भगवान बहुत चतुर हैं, उनको अभी कुछ गड़बड़ करना है, तो वो सुखी होली में हार रहे हैं तो तुरंत पिचकारी निकालते हैं और मारने का प्रयास करते हैं राधा रानी के मुख की ओर। अदानी झट समझ जाते हैं कि अभी ये गड़बड़ कर रहे हैं, हाँ क्या कहते हैं उसको, चीटिंग कर रहे हैं, तो वो ऐसा हाथ कर देती हैं, वो पिचकारी के लाइन के ऊपर ऐसा हाथ कर देती हैं, तो रंग आके उनके हाथ पे टकराता है, कैन इमेजिन, यहाँ से टकरा के कुछ बूंदे चेहरे पे गिर जाती है। तो जैसे ही वो गोरे गोरे चेहरे पर वो गुलाल के रंग की जल के बिंदु गिर जाते हैं ना गालों पर, इतना सौंदर्य खिल जाता है राधा रानी का, इतना सौंदर्य खिल जाता है कि मारने वाला भी हैरान हो जाता है, ऐसे पिचकारी पकड़ के देखते रह जाता है, क्या बात है, वाह, भाव विभोर हो जाता है, जिसके लिए किया वो भी भूल जाता है। और ये गुस्सा की उनकी चीटिंग देखकर जो हैरान हो गई गोपियां है ना, तुरंत आके उनको अरेस्ट कर लेते हैं, तुरंत हाथ वगैरह मोड़ के पीछे ऐसे ट्विस्ट कर देते हैं पूरा, बहुत दर्द हो गया उनको, सब पकड़ के भी गुनहगार बन गए ना, वो गुनाह कर दिया उन्होंने, नियम तोड़ दिया, हारने के बहाने अभी नियम तोड़ दिया। तो फिर क्या हुआ, मुकदमा गया ललिता जी के पास, ये गुनहगार का क्या करना चाहिए बताओ। राधा रानी भी थोड़ी परेशान है ना, क्योंकि ऐसे जीत रही थी मैं तो तुरंत पिचकारी निकाल दिया और ऐसे मुझे करना पड़ा सब कुछ, वो थोड़ी दुखी है, नाराज हो गई, वो खेल रुक जाता है, होली का खेल स्टॉप, मुकदमा ललिता के पास। फिर वो क्या किया जाए इसका, तो निर्णय भी होता है कि इसको पूरा काजल से काला किया जाए, है ना, वो दंड है, मतलब एक तरह से बहुत संकोच है आपके लिए, वो अगर आपको काजल लगाया जाएगा, अब प्रेम से लगाएं तो ऐसा लगाते हैं, बहुत लकीर लगाते हैं ऐसे आंखों में और सुंदर से लगाते हैं, तो श्रृंगार में होता है। होली के पनिशमेंट में क्या होता है, हाथ डुबा कर पूरा ऐसे मुंह में लगाना है ना, कि प्रेम वेम कुछ नहीं, दसों उंगली से लगाना है, आंख में लगे, गाल में लगे, कान में लगे, नाक में लगे, हू केयर्स। और एक उसका पनिशमेंट होता है, अभी दुपट्टा पहन के आते हैं ना हम लोग ऐसे, वो हमारा सम्मान का चिन्ह है, दुपट्टा पहन के आते हैं, उसको छीन लेना वो एक दूसरी चीज पनिशमेंट है। इसका दुपट्टा छीना जाए तो काजल लगाया जाए और उसके पीठ पे एक गाली लिखी जाए जो हम यहाँ पर नहीं बोल सकते आपको। हाँ तो कान में बताएंगे बाद में आप क्या है वो गाली। तो ये अभी तय हुआ, काजल लाया जाता है और कौन करेगा पनिशमेंट, राधा रानी स्वयं करेगी। उसी पर निशाना बनाया था पिचकारी का, बिना परमिशन का के सामने लेके आते हैं। राधा रानी अपने दोनों हाथ काजल में डुबाती है और उसको लगाने जाने वाली है तो ये मुंह ऐसे कर देते हैं, बहुत होशियार है ना वो। तो फिर दो चार सखियां हाथ मरोड़ के खड़ी हैं ऐसे पीछे, दो सखियां और आती है, उसकी सर को पकड़ते हैं ऐसा फिक्स कर देते हैं, राधा रानी उसको पूरा काजल लगा देती है। तीसरी सखी आके दुपट्टा खींच लेती है, तीसरी सखी आके पीछे लिख देती है डैश 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 जाओ अभी आप यहाँ से, इस तरह से बड़ी कर देते हैं। फिर कृष्ण भगवान सभी सखियों के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं, तो बहाना है उनका, उनको दंडवत करना ही है, वो तो वहीं से प्लान करके आए हैं आज क्या कर रहे हैं। सबके चरणों में गिरकर दंडवत प्रणाम करते हैं, सबको दक्षिणा देते हैं, सबको गिफ्ट देते हैं फगुआ। यही होली के खेल का रहस्य है, स्वयं परमेश्वर भगवान जो है वो भी हारने के लिए यहाँ पर आते हैं। सब जगत में विजयी है वो, उनका नाम ही विजय है, सब जगत में विजयी है वो, हर चीज़ में विजयी है, यहाँ पर परास्त होने के लिए आते हैं। देखो हर चीज़ में जो जीतता है ना, समझो अभी अपना कोई टेनिस का चैंपियन है जो अभी 20 खिताब जीत चुका है, उसको भी अपने बेटे के साथ टेनिस खेलते हुए हारने में आनंद आता है, वही पारिवारिक भावना है ना। जितना तो बाहर वालों से है, हारना घर वालों से, ये ब्रज का भाव है, इसको समझना चाहिए। यहाँ पर ठाकुर जी भी हारने के लिए आते हैं, तो हमारी क्या कथा, हमको भी हारने के लिए आना चाहिए। और हमारे क्या करना चाहिए, हमको कभी भी भक्तों के साथ जीतने का प्रयास मत करो, इसको मैं पीछे कर दूंगा, मैं आगे चला, बुक डिस्ट्रीब्यूशन में मैं इसको पीछे करके आगे जाऊंगा, फंड रेजिंग में मैं इसको पीछे करके इसके आगे नंबर वन गोल्ड मेडल बन जाऊंगा, मैं गृहस्थ अवार्ड में मैं सबसे बेस्ट गृहस्थ बनूंगा, इसमें मैं सबसे डीटी वर्षिप में मैं बेस्ट ड्रेसिंग करने वाला बनूंगा, हाँ इस सेवा में मैं सबसे बेस्ट बनूंगा। बोलना चाहिए कि डीटी वर्षिप में ये माता जी ने बहुत बढ़िया सेवा किया, ये कैंप में इसमें बहुत बढ़िया सेवा की। गुरुदेव क्या बताते हैं कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन में आपका 1,00,000 गीता होना चाहिए, लास्ट ईयर आपने 68,000 किया था ना, इस साल आपका 1,00,000 होना चाहिए। तो आपको लगेगा वाह, इसका मतलब हमारे टेंपल को भी फर्स्ट आना है वर्ल्ड में। लेकिन महाराज ने वाक्य पूरा किधर किया, अभी आधा वाक्य बाकी है। उन्होंने कहा कि आपका 1,00,000 गीता होना चाहिए और आपका वर्ल्ड में लास्ट नंबर आना चाहिए। दैट इज द रियल स्पिरिट, यू डू योर बेस्ट बट स्टिल बी द लास्ट। महाप्रभु चैतन्य यही बोलते हैं, यू बी द बेस्ट बट स्टिल रिमेन द लास्ट। तो वही भाव है जो होली में यहाँ पर बताया जा रहा है, आप समझने का कोशिश करो। भक्तों के सामने विजय प्राप्त नहीं करना है, भक्तों के सामने हार माननी है, दिल से हृदय से इच्छा से, तब जाकर भगवान की कृपा प्राप्त होती है। क्योंकि जो अपने भक्तों के सामने खुद भगवान अपनी हार मानने के प्लानिंग बना के आते हैं, वही भक्तों के सामने आप जीतने का प्लानिंग कैसे कर सकते हो, हाउ यू कैन डू दैट। तो ये भाव जब होगा ना, तो आप चाहे अमेरिका में बैठे हो या दुबई में बैठे हो या और कहीं दुनिया में बैठे हो ना, ब्रज भाव आपके हृदय में प्रवेश करेगा, ये रहस्य उसका। बंबई में बैठे हो, दिल्ली में बैठे हो, भक्तों के सामने सम्मान पूर्वक आप अगर नम्र बन जाते हो, हाँ एक तरह से हार दुनिया में कैसा होता है, भौतिक दुनिया में नम्र बनना मतलब हार के बराबर ही है, रुबाब करना मतलब जीत के बराबर है, मैं उसको हाव रौन दिया उसको मैंने, फिर ये भौतिक दुनिया का भाव है। मटेरियल वर्ल्ड में ऐसा है, उसका एक तरीके अपोजिट स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है, जहाँ पर जीत सकते हो वहाँ हार जाना यही जीत है वहाँ की। पर कठिन है समझना, लेकिन समझ सकते हैं आप गुरु कृपा से, संत कृपा से आप समझ सकते हैं। तो कभी भी भक्तों से जीतने का प्रयास मत करो, भक्तों को आगे करो हमेशा, खुद पीछे रहो, महान बनो आप, लेकिन भक्तों को अधिक महान बनाओ अपने से। बस में भी जा रहे हो ना यात्रा में, सबको पहला सीट दो, आप बाद में बैठो, है ना, सब जगह पर है ये भाव। हाँ ये मत समझना प्रसाद में जा रहे हो यात्रा के बाद में, सबको पहले खिलाओ बाद में खाओ, आपके आते आते स्वीट खत्म हो गया गौरव समझो अपना कि मैंने सबको खिलाया मैंने नहीं खाया, यू आर सक्सेसफुल। हम लोग एग्जैक्टली उल्टा करते हैं उसका, है ना, इतना सब किया फिर भी स्वीट नहीं मिला, इतना काम करवाया स्पीकर उठवाया मुझसे, ये सेटिंग करवाया और लड्डू वो मृदंग उठा के लिए मैं पहाड़ तक लेके गया, इतना सब काम किया नीचे पहुंचा तो लड्डू गायब। ये हमारा भाव है, तो हम हर चीज़ में अपने आप को क्या मिलेगा वो देखते रहते हैं, लेकिन हर चीज़ में गोपियाँ ब्रजवासी दूसरों को क्या मिलेगा, भगवान को क्या मिलेगा, राधा रानी को क्या मिलेगा, उसी का विचार करते रहते हैं, उसी में विजय मानते हैं, उसी में धन्य मानते हैं, उसी में सफलता मानते हैं। तो अध्यात्म एक लेवल पे है, ब्रज भाव दूसरे लेवल पे, स्पिरिचुअलिटी इज ऑन वन लेवल बट ब्रज वासी स्पिरिट इज ऑन डिफरेंट लेवल, उसको पकड़ना है तो यह जगह पर्याप्त है। इस जगह पे वो स्पिरिट को आप पकड़ सकते हो, वो स्पिरिट को पकड़ते ही भगवान आपके हो जाएंगे, आप भगवान के हो जाएंगे। इसलिए हम लोग यहाँ पर आते हैं, बार बार आते हैं, पुकारते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, ठाकुर जी के पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करते हैं, ताकि वो भी हारने का प्रयास कर रहे हैं, हम भी हार उनके पीछे पीछे हारने को तैयार हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।